بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رکوع نمبر 14 ہے جو آیت نمبر 104 سے 112 تک ہے. سورت بقرہ کا رکوع نمبر 13 ہے یہ. چلیے تفسیر دیتے ہیں اور جو نئے لفظ آئیں گے اس کی وضاحت ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو اور کہا کرو کہ انظرنا اور سنتے رہو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اس آیت میں لفظ رائنہ نیا لفظ ہے. را عین نون اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نگہبان، حفاظت، نگاہ کرنا. ایک لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا رائی، شیفرڈ کو کہتے ہیں، بکریوں کو چرانے والا. تو اس کو رائی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی گہری نظر اپنی بکریوں پہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس آیت میں میرا خیال ہے کہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. انظرنا واسمعوا، یا اس آیت کی اگر ہم تفسیر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر، اور کہا کہ تم رائنا نہ کہا کرو. کب نہ کہا کرو کچھ بھی نہیں بتایا. یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس آیت سے کچھ پتہ نہیں چلتا. جب تک اس آیت کو ہم حدیث اور سیرت کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی وضاحت کرنا تو پھر بالکل ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اس سے معلوم ہوئی کہ پھر اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک ہم حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے، آیات کو ان کے شان نزول کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ہم قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے. وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا پھر آؤٹ آف ٹیکسٹ تفسیریں کرتے ہیں، پھر وہ ایسی آیات کا تو بالکل بھی کوئی مفہوم بیان نہیں کر سکتے. تو ضرورت ہے کہ اس آیت کے نزول کو ہم دیکھیں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی لیتے تھے اور تعلیم بھی لیتے تھے. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. علم کہیں سے بھی مل جاتا ہے، لیکن تعلیم کے لیے استاد ضروری ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین استاد تھے کہ جو صرف تعلیم ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ ادب بھی سکھاتے تھے. یعنی صرف کتابوں کا بوجھ ہی نہیں تھا بلکہ ادب بھی تھا. تو عام طور پہ ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کو وہ آیت سکھاتے اور پھر اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم بھی آپ ہی بتاتے تھے. اسی طرح باضابطہ طور پہ محفلوں کا انعقاد بھی ہوتا تھا. تعلیم کے لیے ایک ایسا ماحول بھی ہوتا تھا کہ جہاں وہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے. اور اللہ کے نبی بہت وسیع القلب تھے. آپ نے لوگوں کو کبھی بھی اس بات سے نہیں روکا تھا کہ آپ میرے پاس سیکھنے کے لیے نہ آئیں. ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان یہود بھی آتے تھے. جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محفلوں میں مسلمان بھی آتے تھے اور مسلمانوں کے پردے میں چھپے ہوئے منافق بھی آتے تھے، اور اسی طرح آپ کی محفلوں میں یہود بھی آتے تھے. آپ نے ایسی کوئی ڈسکریمینیشن نہیں کی تھی کہ یہاں آنے کے لیے خاص گروہ چاہیے یا آپ کو ایک خاص کسی چیز سے جوڑنا ہے پھر آپ سیکھیں گے، بلکہ ہر ایک آتا تھا. اب کچھ تو سیکھنے آتے تھے بیچارے، کچھ ایسے تھے کہ جو سیکھنے والوں کو وہاں سے ہٹانے بھی آتے تھے. اور ان کا دل کیا ہوتا تھا کہ اس محفل کی روحانیت کو ختم کریں. یہود بھی وہاں جب آتے تو دل میں تو تڑپ یہ تھی کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں سیکھ رہے ہیں، اور اسلام کیوں عام ہو گیا، اور یہودیت ہی اچھی تھی. اب چاہتے کیا تھے کہ کسی بھی طرح سے اس موقع کی سنجیدگی اور اس محفل کی برکت کو کم کیا جائے. تو کرتے کیا تھے کہ جب کوئی بات بیان ہوتی تو یہ شو کرتے ہوئے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی یا ہمارے لیے بات دوبارہ کرتے ہیں. اس دور کا ایک معروف رواج تھا کہ رائنہ کہتے تھے. رائنہ کا اگر ترجمہ دیکھیں تو کیا بنتا ہے؟ ہماری رعایت کریں. یہ بالکل ایسے کہ جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں اور میں بول رہی ہوں، ترجمہ لکھاؤں اور تھوڑا تیز بول دوں، یا میں بولتے بولتے کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جو آپ پوری نہیں لے سکے، یا کچھ اسٹوڈنٹس لے لیں لیکن جو تھوڑا سا اس کو گریپ نہ کر سکیں، اخذ نہ کر سکیں وہ نہ لیں، तो फिर वो हाथ खड़ा कर सकते हैं या कह सकते हैं कि राय ना, कि हमारी थोड़ी रियायत करें, मतलब यह कि हम तेज़ नहीं लिख सकते, आप आहिस्ता लिखाएं। ये एक रिवाज था उस दौर का कि जिसको बात समझ ना आती वो राय ना कहता। ये ऐसे ही जैसे आज के दौर में एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ या पार्डन, अरब लोग अफवन कहते हैं, इस तरह का एक रिवाज था। कोई हरज नहीं था इस लफ्ज़ में, ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ था, इसमें किसी किस्म की कोई भी खराबी नहीं थी। लेकिन यहूद ने दिल के बुग़ज़ को और इस्लामों मुसलमानों से जो उनका दिल इस बात पे खट्टा था कि ये क्यों इस तरह से ये काम हो रहा है, तो वो क्या करते थे कि रायना लफ्ज़ की बजाय राई ना कहते थे, बस आइन के बाद या का इजाफा कर लेते थे। और राई जो लफ्ज़ था ना, ये अरबी लफ्ज़ नहीं था, इब्रानी लफ्ज़ था, और इसका मानी क्या होता था? बेवकूफ़, ओ अहमक, या फिर हमारे चरवाहे। राई बन गया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे। असल में इस आयत से आपको रसूल की तौहीन या उसकी शान रिसालत जो है उसके अंदर गुस्ताखी करना और उसके साथ जो मामला अल्लाह ताला ने किया वो दोनों मिलेंगी। अब हुआ क्या कि ना तो सहाबा किराम ने ये कभी कुछ कहा था, सिर्फ यहूद कहते थे। एक तरीका क्या होता कि कुरान पाक की आयत आती कि या अय्युहल यहूद ला तकूलू राईना, डायरेक्ट बात की जाती, ये नहीं कहा। ना तो यहूद को पुकारा, ना लफ्ज़ को छेड़ा, बल्कि ईमान वालों को कहा कि तुम ये रायना ही कहना छोड़ दो, जिसमें कोई हर्ज नहीं था। ये कितना खूबसूरत असूल उम्मत को दे दिया कि टकराव की पॉलिसी छोड़ दो, तुम्हारे किसी सही काम को बिगाड़ने या उससे दलील लेकर कोई गलत काम करने लग जाए उससे ना उलझो, अपना रास्ता बदल लो। ये ऐसी है कि जैसे कोई ड्राइव करे और सामने एक पत्थर आ जाए, एक तरीका यह कि उस पत्थर से गाड़ी टकराओ, दूसरी बात है उस पत्थर से लड़ो, हटो यहाँ क्यों हो, चलो कुल्हाड़ा लाओ, इसको पहले हटाओ, किसी तरीके से इसको हटाएं। सारी मुश्किल काम है, आसान काम क्या है? अक्लमंद ड्राइवर कौन है कि थोड़ी सी गाड़ी राइट कर ले या लेफ्ट कर ले और उसको बाईपास कर दे, तुम खुश रहो, इधर बैठे रहो, उनको उनके हाल पे छोड़ो, अपना काम करते जाओ। अल्लाह ताला ने सहाबे कराम को कह दिया कि तुम ही ये सही लफ्ज़ कहना छोड़ दो, बल्कि क्या करो, कुलुन जुरना, क्या कहो, हमारी तरफ नज़र कीजिए। बिल्कुल उसी का मिलता जुलता लफ्ज़ दे दिया कि नबी हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमें मोहलत दें, हमें बात समझाएं, और वसमाऊ पहले ही गौर से सुना करो कि तुम्हें बीच में दोबारा ये पूछना ही ना पड़े कि क्या कहा था या क्या नहीं कहा था। यानी जो लोग गौर से बात सुन लेते हैं फिर उनको दोबारा वो बात कहनी नहीं पड़ती। तो तुम गौर से सुनो, और रह गई बात कि ये तौहीने रिसालत के ये मुर्तकिब हुए अल्लाह के नबी की शान के अंदर गुस्ताही के, तो वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम, काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। कौन सा कुफर है इधर? ये कुफ्रे रिसालत है, या उनका तौहीद में कोई नक्स नहीं दिखा, कुछ और नहीं था, बल्कि इससे ये पता चल गया कि वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानगही करते हैं, अल्लाह की निगाहों में उनका क्या मुकाम है, कहाँ, इनको अल्लाह पे के ऊपर छोड़ दो और इनके साथ अल्लाह ताला खुद ही अपना मामला कर लेगा। अब ये एक आयत है, इससे बहुत सारी बातें समझ आती हैं, जिसको अगर हम पॉइंट्स में देख लें तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बड़ी अच्छी चेकलिस्ट भी तैयार हो सकती है। पहली बात है कि इल्म की महफिलें किसी पे बंद नहीं होनी चाहिए। लोगों को ख़ास किसी गिरोह के साथ जोड़कर ये कह देना कि जो इस गिरोह से ताल्लुक़ रखता है उसको तो आने की इजाज़त है और दूसरे को नहीं, ये गैर इस्लामी तरीका है। दूसरी बात ये समझ में आती है कि जब कोई दूसरा आपके लिए मुश्किल खड़ी करे उससे उलझने की बजाय आप अपना रास्ता बदल लें। फिर तीसरी बात, यहाँ अल्टरनेट की पॉलिसी भी समझ आती है, बेहतरीन चीज़ है ये। लोगों को जब किसी चीज़ को छोड़ने का हुक्म दें तो उसका कोई बेहतरीन अल्टरनेट भी दें, उनको कुछ उसका मुतबादिल पेश करें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गाने छोड़ दें तो उनको कोई मुतबादिल दीजिए, आप चाहते हैं कि बच्चे वीडियो गेम्स ना खेलें और अपनी नज़रें ना ख़राब करें और अपने आप को परेशान ना करें, तो उनको फिर कोई उसका अल्टरनेट दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत दोस्तों में ना रहें, बाहर ना ज़्यादा रहें, तो फिर घर में उनको कोई अल्टरनेट दीजिए। जिस इंसान की आप इसलाह चाहते हैं, पहले आप खुद भी तो उसको उसका कोई रिस्पॉन्स दें। फिर अगली बात क्या पता चली कि कुछ लोग होते हैं जिन पे इंसान को बड़ा मान होता है, उसको पता होता है ये बुरा नहीं मानेंगे, बजाय इसके कि किसी ऐसे शख्स को छेड़ा जाए जो बहुत हसास हो, बात बात पे नाराज़ हो जाए, रूठ जाए और वहाँ से उठ के फितना फैलाए। बेहतर क्या होता है कि जिस शख्स पे आपको एतमाद है आप उसको टोक लें। जिसको कहते हैं ना, कहना किसी को या सुनाना किसी को, एक वाक्य भी मारूफ है कि हज़रत हसन और हुसैन ने एक बार देखा कि एक बूढ़ा शख्स था और वो वुज़ू कर रहा था और दुरुस्त नहीं कर रहा था। एक तरीका क्या था कि उनको जाके कहा जाए कि आप सही वुज़ू नहीं कर रहे, लेकिन उनको अदब के तकाजे से ये बुरा लगा कि अच्छा नहीं लगता, तो कहा अब क्या करें। एक ने कहा कि चलो मैं उसी तरह वुज़ू करता हूँ जैसे ये कर रहे थे, तो तुम मुझे टोकना। कितनी प्यारी बात हुई ना। जो ही वह दूसरे ने उस बुज़ुर्ग के तरीके से वुज़ू किया, तो पता क्या चला कि पहले ने कहा भाई ये ठीक तरीका नहीं है, और समझ आए, तो जिनकी बात थी वो भी समझ गए कि असल में ये मुझे सिखाया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट तबलीग ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब ज़ख़म के ऊपर सीधा अगर शतीर चला देंगे ना तो खून ही निकलेगा। अक्लमंद डॉक्टर कौन होता है जो ज़ख़म को छोड़ के इधर उधर नश्तर चलाए। हम तबलीग के नाम पे बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जिससे ज़ख़म और ख़राब होने लगते हैं। फिर एक और बात पता चली कि अल्लाह के नबी और सहाबा कराम गैब नहीं जानते थे। सहाबा कराम को नहीं पता चल सका, अल्लाह के नबी को नहीं पता चल सका कि इन्होंने रायना को राइना कहा, लेकिन सातवें आसमान पे अल्लाह ताला को पता चल गया। और अगली बात पता चली कि जो अल्लाह के नबी की तौहीन करेंगे ना, अल्लाह उनको खुद ही काफ़ी है, वो खुद ही निपट लेगा उनको। वक्त और हालात का अंदाज़ा लगाया जाएगा, लेकिन बस दफ़ा ऐसी बातें होती हैं कि रिएक्शनरी होके इंसान फिर उस काम को मज़ीद ख़राब करता है। जब भी मुसलमानों में इश्तियाल आया, उसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा। एक शख्स पहले ही गुस्से में हो, आप उसको मज़ीद गुस्सा दिलाएंगे तो नतीजा क्या होगा? वो और ज़्यादा आपका ही नुकसान करेगा। कोई साले दीवाना है, उसके हाथ में कोई ऐसा हथियार आ जाए, तो अगर आप उसको गुस्सा दिलाएंगे तो वो उससे आप ही को नुकसान दे सकता है। इसलिए रिएक्शनरी होने की बजाय अपने आप को जज्बात पे काबू पाते हुए वही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए जो अल्लाह के नबी का तरीक़ेकार था। मक्का में आपको मुज़म्मम कहा जाता था, अबू लहब आपका अपना चचा था, और उसकी बीवी आपको कहती थी या मुज़म्ममु, ओ मुज़म्मम, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मुज़म्मत किया गया, यानी तेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की गई। तो जब लोग अल्लाह के नबी को ये खबर देते थे कि आपको पता है कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो आप आगे से कुछ सफाई पेश करने या उसके बदले में कुछ और उनको कहने नहीं निकलते थे, बल्कि आप मुस्कुरा के कहते थे ये कौन है, मैं तो मोहम्मद हूँ, यानी मैं तो मोहम्मद हूँ, ये कोई और ही होगा। ये जो रवैया होता है ना, ये दूसरे को खुद ब खुद अपना रवैया बदलने पे मजबूर करता है। वरना तो याद रखिए कि फिर खैर से ज़्यादा शर फैल जाता है। फिर एक और चीज़ इससे पता चलती है कि उस्ताद का दर्जा, यानी से एक आयत पे मुफस्सरीन ने कई बातें नोट करवा दी कि उस्ताद के साथ इंसान का मामला कैसा होना चाहिए। और असल में ये सहाबा कराम की तरबियत हो रही है। एक वो लोग होते हैं जो इल्म की महफिलों से बाहर फिरते हैं, वो आमत उन नास होते हैं, उनसे आप कभी भी किसी भी किस्म की चीज़ की तवक्को कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, वो कुछ भी करें, उनको हक है बल्कि, इसलिए कि जहालत तो फिर अपना आप बनवाती है। लेकिन वो लोग जो इल्म के पानी से नहा लेते हैं ना, उनके उठने बैठने बात करने हर चीज़ के अंदर इस्लाम दिखना चाहिए, क्योंकि इंसान का इस्लाम उसके अखलाक से पता चलता है, किताबों में लिखे हुए नोट से नहीं पता चलता। मोहसिन के दर्जे पे अगर पहुंचना है तो हर काम को बेहतरीन अंदाज से करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों में गलती नहीं होती, लेकिन वो अदब के ख़िलाफ़ होती है बात। इस बात को इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नुक्ता उठा के क्या बताया कि ऐ नबी, जो लोग आपके पास आके बैठ के सीख रहे हैं, इनको ये बात सिखा दें। फिर एक और चीज़ पता चली इससे, इस कौम का जिसकी ये बात हो रही है, इनका एक ख़ास मिजाज भी समझ में आता है कि ये बातों को बदल देते थे। पीछे हमने पढ़ा तहरीफ की बातें, असल में ये लफ्जी तहरीफ की एक मिसाल है, यानी मुंह पे बैठे हुए बात को बिगाड़ देते हैं। आज भी देखिए कि बोलने के अंदाज से तब्दीली से मानी बदल जाता है, तो यहूद का इससे रवैया दिखता है कि ये बातों को बदलते थे, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना पेरोडी करना, जैसे स्टाइल बदल के। इसका एक ख़ास लफ्ज़ भी उर्दू में, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? यानी किसी की कही हुई बात को सुनाना लेकिन ज़रा अंदाज बदल के, क्या बोलते हैं इसको? नकल उतारना, और जो फेसेस बनाते हैं मुंह बिगाड़ना होता है ना। यानी इस कौम की ये बात समझ आती है, सूरत निसा आयत 46 में भी आता है कि मिनल लजीन हादु यहर्रिफूनल कलीम अम्मवादीही, कि वो लोग जो यहूदी बने वो कलाम को उसकी जगह से बदल देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। वस्मा गैर मुस्मैन, अल्लाह करे कि तुम ना ही सुनवाए जाओ। यानी वहाँ भी यही मौजू है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में आके ये बातें करते थे कि अल्लाह करे तुम गैर मकबूल हो जाओ, तुम्हारी शोहरत ख़त्म हो जाए, ये जो बातें तुम हर वक्त कहते रहते हो ये तुम ना ही लोगों को कहो। रायना लयम भी अलसिनतिहम, रायना के लफ्ज़ को बदल देते थे अपनी ज़ुबानों के ऐच पेच से। व तानम फ़ि दीन, तो वो दीन में तान करते थे। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह अगली आयत में समझ आएगी कि कोई किसी ऐसे शख्स को क्यों छेड़ता है जो ना तो खुद किसी को छेड़ता है और ना वो किसी के छेड़ने से छेड़ता है। अल्लाह के नबी की ये खूबी थी, कभी आपने किसी को नहीं कहा, कोई एक वाक्य आप हदीस का या सुन्नत का सीरत का सुना दें कि आपने जाके बैठ के लोगों को कहा हो कि ये क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो। आप नहीं छेड़ते थे, आप लोगों के सोए हुए जज्बात को नहीं उठाते थे। इसी तरह जब लोग आपको तंग करना या चिढ़ाने की कोशिश करते थे कि ज़रा गुस्से में आके आप कुछ बोले, तो आप उस वक्त ठंडे मिजाज के थे। जो बंदा किसी को कुछ ना कहे, ज़रा सोचें लोग उसको क्यों कुछ कहते हैं? इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा मनफी जज्बा होगा, उसको हसद कहते हैं। उसी का तस्करा अगली आयत में उसको साथ लेके फिर कुछ बातें और भी इसकी समझ आएंगी। फरमाया मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से। नंबर एक, यानी ना तो अहले किताब ये बात चाहते हैं और वलल मुशरिकीना, और ना मुशरिकीन चाहते हैं। दो ही गिरोह थे ना उस दौर में, अहले किताब के रिप्रेजेंटेटिव वही थे जो मदीना में थे, और मुशरिकीन कौन थे जो मक्का में थे। यानी दोनों गिरोह ये नहीं चाहते क्या, अय्युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, कि तुम पर कोई खैर नाजिल हो तुम्हारे रब की तरफ से। और खैर से यहाँ मुराद वही दीन और कुरान और इस्लाम और जो भी इज्जत अल्लाह ताला आपको दिन ब दिन दे रहा था, वो नहीं चाहते कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको मिले। तो क्या इनकी इस चाहत से अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपसे रोक ली? नहीं, हर दिन अल्लाह के नबी के ज़रिए जो बात हुई वही फैली, क्योंकि वो सच थी, वो हक था। और जो कुफर पे थे या अहले किताब होते हुए दीन पे नहीं थे, उनकी बातें ख़त्म हो गई, क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज़ें थी, वो एक धूप पे आई हुई झाग की तरह तो थी। जब तक कुछ नहीं था उनकी भी कोई रोब धोब था, उनकी भी कोई चमक दमक थी, लेकिन जब हिदायत का सूरज नमूदार हुआ तो वो सारे टुमटमाते हुए दिए बुझ गए। और ऐसा क्यों हुआ? वल्लाहु यहतस्सु बिरहमतिही, और अल्लाह चुन लेता है, ख़ास कर लेता है अपनी रहमत के साथ, मैं यशाऊ जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़ा साहिब फ़ज़ल है। इस आयत में लफ्ज़ यख्तसु थोड़ा सा नया लफ्ज़ है, खा स्वाद स्वाद, लफ्ज़ पे दे के गलती ना खाइएगा। हर लफ्ज़ जो होता है वो लफ्ज़ का नहीं होता, यहाँ ता जो दिख रही है ये रूट की नहीं है, खस्सा उर्दू में हम बोलते हैं ना खास, मेहमान खसूसी, ये वही लफ्ज़ है। ख़ास कर लेना, मखसूस कर लेना, बाज़ अफराद को दूसरों से अलग करके ख़ास बर्ताव करना और किसी को किसी चीज़ के साथ मुख्तस कर देना, इसको कहते हैं ख़ास करना। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये नहीं चाहते, मा यवद्दू, ये नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? काफिर और अहले किताब। क्या कि आपके ऊपर कोई रहमत उतरे? यहाँ खैर से क्या मुराद है? क्या मिल रहा था अल्लाह के नबी को इस काम से? घर बन रहे थे आपके, फैक्ट्रियाँ लग रही थी, गाड़ियाँ नहीं, क्या था खैर? क्या थी अल्लाह के नबी के पास? जी, अल्लाह ताला का कुर्ब। जी इज्जत मिल रही थी। कुरान दीन हिदायत थी, यानी खैर दो होती है। देखिए कुरान पाक में खैर का लफ्ज़ दो तरह आता है, इन्नल इंसान लिखुब्बिल खैर इला शदीद, सूरत आदियात में आता है कि बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बहुत खरीस है। तो क्या अल्लाह के नबी को कोई माल मिल रहा था? वहाँ तो हाथ में आया हुआ भी जा रहा था, वो तो सब मक्का में दे दिला के आप आ गए थे आगे, ऐसी खैर कोई भी नहीं थी। दूसरा खैर का लफ्ज़ आता है भलाई, हसना, हर खैर। और देखिए नकरा में आया है, यानी कोई खैर। वो ये नहीं चाहते कि कोई ख़ास खैर ना मिले। यहाँ थोड़ा सा ग्रामर का एक लफ्ज़ है, अल खैर नहीं है प्रॉपर नाउन, मारफा नहीं बल्कि खैर कोई, और मिन बास का तबईज़, थोड़ी सी सम ऑफ भी ना मिले। यानी इनको तो वो एक आंख देखना ही नहीं चाहते। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बराबर ना आ जाए, वो ये भी चाहते हैं कि आपको कतरा भी छोटा सा ना मिले। इतना हसद था उनके दिलों में, ज़ुबान से कितने दावे करते थे हम आपके खैर ख्वाह हैं। इन आयतों के बारे में आता है कि बाज़ यहूदी बाज़ मुसलमानों से कहने लगे कि बखुदा हम दिल से तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, और हज़ार जान से पसंद करते हैं कि तुमको दीनी अहकाम हमारे दीनी अहकाम से बेहतर इनायत हों, तो हम भी इनको कबूल कर लें। मगर क्या किया जाए कि तुम्हारा दीन हमारे दीन से अच्छा साबित ही नहीं हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी कैसे अपने बन के सताते थे, कहते थे नहीं नहीं हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें क्या पता है हमें तुमसे कितनी मोहब्बत है, हम भी चाहते हैं तुम्हें कोई खैर मिले फिर तुम हमें भी दो। लेकिन मसला क्या है कि तुम्हें तो खुद भी कुछ नहीं मिल रही, तुम्हारा दीन तो ख़राब है इतना। बल्कि आगे जाके आप एक आयत में पढ़ेंगे कि यहूद को एक मौके पे मक्का के कुछ लोगों ने आके पूछा कि ये बताओ हम अच्छे हैं दीन में या ये मुसलमान अच्छे हैं जो नया फ़िरका शुरू हो गया मक्का में या मदीना में। सोचो यहूद को क्या कहना चाहिए था कि भाई हम ना इनको माने लेकिन ये अच्छे हैं क्योंकि ये उसी दीन के दाई हैं जिसके दारी हम हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमारे ख्याल में तुम इनसे अच्छे हो, मुशरिकों को मुसलमानों से अच्छा। कि ये कायद का तर्जमा आगे आएगी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं इनको क्या कह रहे हैं, ये मुशरिक को, बेदीनों को ये दीन वालों से अच्छा कह रहे हैं। वजह क्या है? ये हसद इतनी बड़ी बुराई है। देखिए दुनिया में जो सबसे पहला जुर्म हुआ था वो क्या था? हसद। इब्लीस को आदम से हसद हुआ। दुनिया में पहला कत्ल जो हुआ वो क्यों हुआ? हाबील को काबील, और काबील और हाबील का किस्सा पढ़ेंगे सूरत माईदा में। काबील को हाबील से हसद हुआ। इंसान जन्नत से क्यों निकलवाया गया? हसद। रिश्तेदारों में भाइयों ने भाइयों की दुश्मनी क्यों की? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप की मोहब्बत से निकाल के कुएं में फिकवाया, किसने करवाया? हसद ने कराया। और पूरी एक उम्मत को दीन इस्लाम से दूर क्यों रखा यहूद ने? हसद मिन इंदी अनफुसिहिम। ये इतनी बड़ी बुराई है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खाती है ना, इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता है। आप इस हदीस को कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन इसकी असल नौइयत अगर आप समझे ना तो आपको इस चीज़ की बात समझ आएगी कि हासिद को ये भी नहीं पता चलता कि जो काम मैं करने लगा हूँ इससे मेरी अपनी ही नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो कहते हैं ना हसद की आग में जले, हम तुम्हें तो जलाएंगे, हम खुद भी जल जाएंगे। बाद लोग किसी को मारते हैं और फिर खुद मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ये क्या होता है रिग्रेट? भाई तुमने खुद को मारना था, इसको तो ना मारते। यानी तुम्हें भी नहीं छोड़ा तो खुद को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी ये बातें, और आप यहाँ से आगे, बल्कि पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं ना यहूद के रवैये, यहाँ से आगे तीन, इस एक रुकू में तीन मुख्तलिफ रवैये आपको दिख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते थे। पहले तो लोगों को बाहर से रोक लेते थे, मत जाओ, क्या करोगे, ठीक नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। कुछ सुन लेते, बहुत सारे सुन भी लेते, कुछ ना सुनते आ जाते, फिर ये उनके पास कुछ को भेजते, जाओ। देखिए एक ही महफिल है इल्म की, नसीब फ़र्क है क्योंकि नीयत फ़र्क है। नीयत नवा है ना, और नवा गुठली होती है। एक बंदा मेहनत करके आता है और वो सीखता है, पढ़ता है, अमल करता है, और दूसरा सिर्फ इसलिए आया कि वहाँ फितना डाले। किसका नुकसान हुआ? मुझे कुछ अर्सा पहले किसी ने बताया, यानी जब हालात बहुत बिगड़े थे एक दफ़ा दुनिया की कुछ वजह से, तो मस्जिदों के बाहर पुलिस मुकर्रर की गई थी। पूरा खुतबा वो सुनते थे। तो मैं तो इस पे बहुत खुश थी कि क्या पता उनके दिल में कोई एक सुराख हो जाए, और वो आए तो हैं मुसलमानों को कोई किसी और तरह से फ़ायदा देने, उनको सिक्योरिटी से या कुछ मुखबरी के लिए भी आते थे। ये बात मारूफ है, लोग मुखबर बन के आते हैं। मैं कहती हूँ 100 दफ़ा आए, खुशी से आए। सच इतनी मजबूत चीज़ होती है कि वो खुद को बखुद दिल में डालती है। और कई लोग ऐसे हुए कि जो मुसलमान होते हैं, आप कहानियाँ पढ़ेंगे, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, ऐसे करेक्टर आज के दौर में आपको मीडिया पे दिखेंगे, जिसमें एक नाम मुझे याद भी नहीं, और मुझे वैसे भी याद रहता नहीं। मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि कैसे वो एक औरत गई किस से थी किसी मुल्क में, और वह जाके उसको अल्लाह ने इस्लाम दिया, और इस वो एक इतना बड़ा चैलेंज बनी हुई है बड़ी तरह के लिए। ये देखिए अल्लाह ताला कहते हैं, वल्लाहु यख्तसु बिरहमति ही मैं यशा। अल्लाह चुन लेता है इल्म की महफिलों के, अल्लाह चुन लेता है। अल्लाह खास लोगों को इन कामों के लिए रखता है, खैर के कामों के लिए अल्लाह पहले छांट करता है। हर एक को नहीं अल्लाह ताला चीज़ें देता, क्योंकि हर बंदा इस काबिल नहीं होता इस बोझ को उठाए। अमूमन देखिए, अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो हर दौर में खैर यानी जो दीन और इल्म है और इस्लाम है, इस तरफ आने वाले लोग दूसरे लोगों की निस्बत थोड़े ही होते हैं। ये हज़ारों भी हो जाए ना, तो ये दूसरों के मुकाबले में थोड़े ही हैं। लेकिन ये थोड़े ही वो ख़ास लोग हैं जो अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक होंगे। अब अगर हम आयात में देखें तो यहूद के दो दावे थे। पहला दावा क्या था कि यहूदियत इस्लाम से बेहतर है, और दूसरा ये दावा था कि हम बड़े खैर हैं तुम्हारे। अब ये दोनों दावे, इनकी कोई दलील भी तो होनी चाहिए थी ना। अल्लाह ताला ने इनकी ये बात कि यहूदियत इस्लाम से बेहतर है, इसकी दलील में क्या क्या कि कुछ अहकाम जो तौरात में भी थे पीछे से जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ कुछ उसमें शिद्दत बरत दी। इनके मुफ्तियों ने, फकीहों ने, मुज्तहिदीन ने इज्तहाद कर कर के दिन को मुश्किल कर दी। हुआ क्या कि वो अहकाम जो तौरात में नाजिल हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक इतने मुश्किल, इतने जिसको कहते हैं ना कंजर्वेटिव किस्म वो हो चुके थे कि अमल के काबिल ही नहीं रहे थे। ऐसा कब होता है? तकवा के खुद आख्ता मेयार की वजह से। कुछ लोग जो अपने आप को कर सकते हैं इन चीज़ों पाबंद, वो मुस्तहबात को भी फ़राइज़ ले आते हैं, रिकमेंडेड चीज़ें जो होती हैं उनको लाजिम कर देते हैं, और बाज़ मकरूहात को हराम के दर्जे ले आते हैं। उनका तकवा है, ठीक है, लेकिन इस तकवा का हर बंदा हामिल नहीं हो सकता। नतीजा क्या हुआ कि दीन किस इलाके के मुट्ठी भर लोगों का दीन हो गया, जो नफ्स पे बंदियां लगा सकें, जो अपने आप को उस लेवल रखें। अवाम दीन नहीं वो रहता। अब होता क्या कि वो जो थोड़े से लोग उस दीन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, तो उनकी धाक उठने लगती है लोगों में। माशाल्लाह, फलां तो ऐसा है, फलां ऐसा है, हम नहीं ऐसे, दुआ करो हो जाए। खुद नहीं करते दुआ, दूसरों को कहते हैं। अब होता क्या कि वो दीन सबके लिए काबिल अमल नहीं। अब अल्लाह के नबी के ज़रिए हुआ क्या कि वो सारे इजाफी निकाले गए। खत करो, निकालो, ये तुम्हारी मर्जी थी, तुम करो करो, अल्लाह देगा तुम्हें, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। तुमने ये कमी के ज्यादती की, करते जाओ करते जाओ। अब एक दिन एक बात हुई, फिर दूसरे दिन हुई, तो यहू के हाथ एक शा लग गया। कहने लगे ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम उसी दीन की कंटिन्यूएशन है जो पीछे से चलता आ रहा है, तो फिर इस्लाम के अंदर ये यहूदियत से आसान मसले क्यों आते जा रहे हैं? बात वाजह हो रही है? मैं असल में अगली आयत का बैकग्राउंड बना रही हूँ आपके लिए, एकदम आप परेशान ना हो जाए इसको पढ़ के। यहूद को दो एतराज़ थे। एक एतराज़ क्या था कि अगर हम वही दीन है जिसकी दावत अब मुसलमान दे रहे हैं, तो फिर हमसे मुख्तलिफ दीन क्यों है? जिसको हमने हराम कह दिया वह बस चुप करके मान जाए, आंखें बंद करें कि जो आपके वही दीन है। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा था, और ख़ास तौर पे ये शोशा उठा जब किबले की तब्दीली का हुक्म हुआ। मदीना आने के बाद, हिजरत के कुछ साल कुछ महीने के बाद, किबले की तब्दीली का अमल आया था, जो इंशाल्लाह दूसरे पारे के आगाज़ में हम सब देखेंगे उसके बारे में हुक्म। अब इस पे यहूद ने मुसलमानों को ताने दिए, और मुशरिकीन जो पहले ताक में थे वो तो उम्मीद कर रहे थे कि मुसलमान और यहूद दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनकी ज़ुबान से सुनते आए थे। अब जो ही ज़रा कोई नया हुक्म आता, लोग फ़ौरन टैली करते उसको लेके, जैसे वो आप मैच करते ना कलर, ये इससे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। अच्छा, जो दीन यहूद ने फैलाया होता था वो जाके इस्लाम का मसला उससे मैच करते। अब ये देखिए, ये वाइट है तो ये ब्लैक है। जब ये फ़र्क दिखता ना, तो वो मुशरिकीन को भी बातें करने का मौका मिलता। तो ये क्या चक्कर है? तुम कहते हो एक ही इस्लाम है, हम एक ही सिलसिले की कड़ी हैं, तो ये इतना लाइट हुक्म क्यों हो गया और इतना डार्क क्यों है? तो इस पे यहूद फिर उछलते, तकलीफ़ होती। उन्होंने एक शोशा डाल दिया नाउज़ुबिल्लाह, कि ये इस्लाम ऐसा दीन है मुसलमानों को भी खुद भी नहीं पता कि सही है कि क्या नहीं है। ये क्यों तब्दीलियां हो रही हैं? एक तो नस्ख, ये तब्दीली हुई पिछली शरीयतों से इस्लाम के मुकाबले में। इसी तरह एक दूसरी तब्दीली क्या हुई कि इस्लाम ग्रेजुअली आया। लोगों ने जब इतनी सख्त पाबंदियां लगाई हुई थी ना अपने ऊपर, तो इस्लाम ने उन पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता खोला। नतीजा क्या हुआ कि शुरू में एक हुक्म आया, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा हुक्म आया, फिर तीसरा, स्टेजेस हुई। मसलन जैसे शराब की हुरमत हुई, लोग बिल्कुल यूज टू थे, वो रह ही नहीं सकते थे शराब के बगैर। तो शुरू में कहा कि देखो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको मत पियो। फिर कहा देखो इसका नफ़ा जो है वो थोड़ा है, नुकसान ज़्यादा है। थोड़ा जहन और बन गया। फिर आयत आ गई, देखो शराब से, नमाज से पहले शराब ना पियो, नशे की हालत में नमाज पढ़ो, और जहन साजी हो गई। बस जब ये ग्राउंड प्रिपेयर हुई, तो फौरन आखिरी हुक्म आ गया कि ये शराब और जुआ जो है ये हराम काम है, और इसके बाद आज से इसको तुम नहीं करोगे। फौरन लोगों ने छोड़ा, खात्मों को लगे हुए जाम टूटे, सब ने मान लिया। इंसानी फितरत की रियायत करते हुए अहकाम बतदरीज आए। बच्चा पहले हल्का खाना खाता है, फिर थोड़ा थिक खाता है, फिर खाता है, फिर हर चीज़ खा लेता है। इसी तरह इंसानों की नफ्सियाती भूख भी होती है। हर बंदा एक ही दिन में हाजी, नमाजी, परहेजगार नहीं बन सकता, वक्त लगता है। बजाय इसके कि इस खूबी को सराहते, दिलों में चूंकि बुगस था ना, तो कहा क्या कि इस दीन वालों को खुद ही नहीं पता ठीक क्या है। उसके जवाब में फरमाया, मा ननसख मिन आयतिन औ नुन्सिहा नाति बि खैरे मिन्हा औ मिस्लिहा। जो मनसूख करते हैं हम कोई आयत या भुला देते हैं, तो भेजते हैं इससे बेहतर या इसी के बराबर। यानी तुम इतराज़ क्यों करते हो? हम जो हुक्म बदलते हैं, देखो उसके बाद उससे अच्छा लाते हैं कि मुश्किल लाते हैं? उससे अच्छे ही लाते हैं ना, कम अज़ कम उसी जैसा ले आते हैं। इसलिए तुम इस बात पे एतराज़ ना करो कि इस्लाम के अंदर अहकाम बदल क्यों रहे हैं। छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। कोई नया नया काम शुरू होता है, लोग घरों से उठ के आते हैं, बिल्कुल किसी पाबंदी के आदी नहीं थे। कोई उनको कहे कि जैसे भी हैं आ जाओ, आओ बैठो, तुम ये काम करो। कुछ दिन तक लोगों का जहन थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो फिर उन्हें कहा, अच्छा अब क्या ख्याल है, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ना कर दिया जाए, कोई एक आपकी रोल कॉल लगा ली जाए। रोल कॉल लगा दी। कुछ दिन लोग आदी हुए, तो फिर कुछ दिन के बाद कहा कि क्या ख्याल है, अब आपका यूनिफॉर्म ना रख दिया जाए। हाँ, ये सारी बातें क्या हैं, बुरी हैं कि अच्छी हैं? कि भाई आहिस्ता आहिस्ता आपको उस माहौल का आदी किया गया। और कोई इसको नेगेटिव करे कि देखो इनको पता ही नहीं है, कभी कोई कानून बनाते हैं, इनको शुरू से ये पता ही नहीं था कि हमने इनका यूनिफॉर्म लगाना है। ये इस तरह की बात है, शोशे, इसको आप शोशा कह सकते हैं, जस्ट उड़ी उड़ाई बातें। और इस्लाम को इतने क्लोजली शायद मुसलमान भी नहीं देखते थे जितना क्लोजली ये गैर मुस्लिम देखते थे। कहते थे ये आयत ऐसे क्यों हुई, ऐसे क्यों हुई? अच्छा, फिर पहले नहीं अल्लाह को पता था? हाँ, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इस गलत फहमी का इजाला किया कि ना तो अल्लाह भूलता है नाउज़ुबिल्लाह, कि पहले उसको नहीं पता था कि मैंने शराब हराम करनी है और अब पता चल गया। ना तो अल्लाह ने भूला है, और ना अल्लाह ताला किसी चीज़ को बग़ैर वजह के मनसूख करता है। बल्कि हकीकत क्या है कि अल्लाह का दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए पहले से डिसाइड हो चुका है। हज़रत नूह, हज़रत मूसा, ईसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब एक ही दीन के नुमाइंदे थे। शरीयतें फ़र्क रहीं। शरीयत क्या है? इबादत के तरीके। आज जो हमारी नमाजों की रकत है, ज़रूरी नहीं कि ये हर दौर में यही थी। आज हम साल में 30 रोज़े रखते हैं, ज़रूरी नहीं। हज़रत नूह के दौर में भी आपको होता है कि 2 रोज़े फ़र्ज़ थे, लोग रखते थे। इस्लाम के आगाज़ में सिर्फ 3 रोज़े थे। ये सारी तरतीब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यानी शरीयतें थोड़ी फ़र्क रहीं। एक वक्त ऐसा था कि सगे भाई बहन का निकाह जायज़ था, आदम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल आगाज़ के दौर में, क्योंकि नस्ल चलनी थी। जब पैदा ही सब ने आदम और हव्वा से होना है तो नस्ल कैसे चलेगी? कुछ अरसा ये कानून रखा, फिर जब लोग फैल गए तो हुरमत हो गई। सजदा जायज़ था, आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया फरिश्तों ने, ठीक था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने उनके भाइयों और बाप और माँ ने सजदा किया, तो वक्त के साथ नहीं। लेकिन बेसिक्स कभी नहीं बदले, अकायद में कभी भी नसख नहीं होगा। कि पहले कहा नहीं दो खुदा हो सकते हैं, और किसी दौर में कहा नहीं तीन भी हो सकते हैं, और आज कहा जाए एक है। नसख हमेशा मसाइल में हुआ, फिक्र में हुआ, इबादत के तरीक़ों में हो सकता है, लेकिन बेसिक्स में नसख नहीं हुआ। इसी तरह किस्सों में नसख नहीं हुआ। बाइबल में तो हज़रत आदम की कहानी ये होती कि अम्मा हव्वा ने मजबूर किया और फल चख लिया। उस दौर में अल्लाह ने ये किस्सा उतारा होता। और आज मुसलमानों को ये कहा जाए कि नहीं, फ़अज़ल्लहुमा, कि उन दोनों को बहकाया शैतान ने, हम नहीं मानेंगे इसको। हम कहेंगे कुरान में है कि दोनों को शैतान ने बहकाया, और बाइबल में आता है कि नहीं हव्वा ने बहकाया। तो हम कहें नहीं, हो सकता है नसख हो गया हो, पहले अल्लाह ने ये कहा नहीं। फैक्ट्स कभी नहीं बदलते। ये ऐसे ही है जैसे कोई आपसे यहाँ कहे कि, मिसाल है कि आप ये ओस्लो में बैठे हैं, तो यहाँ से ध्रमन जो है वो अबाउट कितने किलोमीटर है, मिसाल देती हूँ आपसे, 40 माइल लगा लें, मिसाल है यहाँ से 40 माइल। अब ये एक फैक्ट है ना। अब ये आज भी इतना है और आज सिर्फ 4 साल पहले भी इतना ही था। तो कोई कह दे कि आज सिर्फ 4 साल पहले ये 30 था और आज 40 हो गए, तो कोई एक तो गलत ही है ना। तो फैक्ट्स कभी नहीं बदले। इसी बात को अल्लाह ताला ने बुनियाद बना के इनको बताया कि अल्लाह ताला ने दीन को मुख्तलिफ तरह से लोगों के जहनों के मुताबिक करने के लिए वक्त और हालात की मुनासबत से हुक्म दिए। जहनी पुख्तगी होती रही, शऊर पुख्ता हुआ, सोशल वैल्यूज़ बढ़ती गईं। इसके साथ रसूल आते गए, वक्त के मुताबिक तालीमात देते रहे। लेकिन जो अबदी चीज़ें थी, जो इटर्नल थिंग्स थी, वो कभी नहीं बदली। और इस्लाम का मामला यहूदियत या नसरानियत से फ़र्क किस बुनियाद पे है? ये बुनियाद नहीं है उसकी कि इस्लाम को कोई चिढ़ है यहूदियत से, नसरानियत से चिढ़ है। ये एक इतना नेचुरल सा तरीका है। ये ऐसे ही जैसे कोई घर बनाता है, रेनोवेशन होती रहती है ना। घर एक ही है, शुरू में ऐसा सादा था, फिर वक्त के साथ उसमें घर में और बच्चे हो जाते हैं तो आप वहाँ एक कमरा और डाल लेते हैं। कभी आपको एहसास होता है अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको निकाल के एक बड़ा ही हॉल करते हैं। रेनोवेशन होती रहती है, ज़रूरत के मुताबिक अपग्रेडिंग होती रहती है। आप कंप्यूटर लेते हैं, आपने 2 साल पहले लिया, अब इसके अंदर एक ऐसा पुर्जा आप लगा सकते हैं कि इसमें एक और फंक्शन करें, यू कैन डू इट, कर सकते हैं। गाड़ी का मॉडल आता है, फिर अगले साल नई गाड़ी आती है, वो क्यों हम लें जी? इसलिए कि इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये बहुत नेचुरल वे था। लेकिन कोई कहे कि टोयोटा कंपनी को तो गाड़ी बनानी नहीं आती। भाई क्यों? 1960 में जो गाड़ी बनाई थी ना, वो बिल्कुल गोल सी थी। सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, इनको गाड़ी नहीं बनानी आती। देखो आज इनको पता चल गया कि गाड़ी में MP3 प्लेयर लगा लो, आज से 4 साल पहले इनको पता ही नहीं था, इसलिए ये जाहिल है। कोई मानेगा हमारी बात? नहीं। आप कहेंगे ये कंपनी बहुत अच्छी है, हर साल तरक्की कर रही है, प्रोग्रेसिव है, रुकी भी नहीं है एक ही जगह में। हमारी तरह 100 साल पुराने इज्तिहाद पे नहीं रुके हुए कि बस यही काम करना है तो वही करना है। हाँ, तो ये दुनिया के हर काम में इस चीज़ को पसंद किया जाता है। और आप देखिए वक्त के साथ चीज़ें कंफर्टेबल हो जाती हैं। शुरू में एक चीज़ आती है बहुत बड़ी होती है, भद्दी होती है। आपको याद होगा कि जब शुरू में पाकिस्तान में जब एयर कंडीशन्स आए तो भारी मोटे चौड़े थे, और अब देखिए पतले स्प्लिट आ गए। जो चीज़ जितनी एडवांस होती है वो कितनी हो गई, छोटी हो जाती है। पहले इतने मोटे मोटे कंप्यूटर थे, डेस्कटॉप, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्क्रीन थोड़ी स्प्लिट हुई, और अब लैपटॉप्स आए, और अब आपके सेलफोन में आ गए। डेली कैसी हो रही है ना। जितना कोई बातें शुरू में करता है वो लंबी लंबी बातें करता है, टूटे फूटे जुमले बोलता है। जितना इल्म पुख्ता होता है वो बिल्कुल शुस्ता जुमले बोलता है। एक नेचुरल चीज़ है, इस्लाम की खूबी थी। लेकिन हसद की आंख से देखने वालों को इस्लाम की ये खूबी नहीं दिखी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे कह दो क्या के मा ननसख मिन आयतिन, जब भी हम कोई मनसूख करते हैं आयत, यानी पहली आयत को हटा के उसकी जगह दूसरी ले आते हैं, औ नुनसिहा, या हम उसको भुलवा देते हैं। ये क्या होता था, शुरू में ऐसा हुआ कि कुछ आयतें कुरान पाक में आईं, फिर उसके बाद उसको मनसूख किया गया। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में थोड़ी सी। लेकिन कुछ ऐसी थी जहनों से भी भुलवा दी जाती थी। एक सहाबी थे, कुरान पाक जितना भी उस वक़्त तक नाजिल था पढ़ा हुआ था, रात को पढ़ते थे, ख़ास एक आयत पे आते हैं तो आगे याद ही नहीं आ रहा, भूलते ही जा रहे हैं भूलते ही जा रहे हैं। परेशान हो गए, अल्लाह के नबी के पास आए, सुबह कहा अल्लाह के नबी मैं तो हलाक हो गया, मुझे तो कुरान भूलने लगा। कहा भाई क्या हुआ? कहा यहाँ आता हूँ तो इसके आगे एक आयत जाती वो अब याद नहीं आ रही। कहा फिक्र ना करो, वो रात को मनसूख कर दी गई। अल्लाह जहनों से, हाफिजों के जहनों से भी निकाल देता था। अल्लाह ताला कहते हम करते थे ऐसा, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी का आखिरी दौर शुरू हुआ, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, सूरह मायदा की आयत 3 है कि आज के दिन तुम पर दीन पूरा हो गया और तुम पे इस्लाम की नेमत पूरी कर दी, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, यानी ये सब कुछ कर दिया, अब नहीं होगा। अब कोई कहे कि ये कुरान पूरा नहीं है, लोग कहते हैं असल 40 पारे थे, 30 आ गए, अभी 10 आने हैं, लोग कहते हैं। मुसलमानों का एक फ़िरका कहता है, कोई कहता है बकरी खा गई, कोई कहता है फलां इमाम लेकर आएगा। अल्लाह ताला कहते हैं अब ये पूरा है, अब ना नसख है ना नुनसी है, क्योंकि एक चीज़ अब एक क्वालिटी पे सेट हो गई है। अलम तालमन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है? एतराज़ क्यों करते हो कि पहले थी और अब नहीं है, या जो पहले हुक्म नहीं थे अब आ गए हैं? अल्लाह कादिर है। मसलन कोई कहे कि भाई मेरे पास पूरी अथॉरिटी मौजूद है, मैं यहाँ जो मर्ज़ी करूँ, आप अपने घर में चेंजेस करें, आप कर सकती हैं ना। कोई आपसे आपको मना करे कि आप ये क्यों सेटिंग चेंज कर रही हैं, तो आप कहेंगे कि मैं कादिर हूँ इस पर, मेरा घर है, मैं उठाऊँ मैं रखूँ मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो एक इंसान कुदरत रखता है, तो फिर क्या अल्लाह ताला की कुदरत नहीं होगी? ये एक हल्का सा खुलासा था इस आयत का, तिलावत सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे।
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير